ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए श्री श्री राधा पार्थ सारथी तीनों नाम आ गए। राधा रानी हमारी स्वामिनी, पार्थ अर्जुन और सारथी चक्रधारी श्री कृष्ण, तो तीनों का जय जयकार करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। भगवत गीता का परिचय, शास्त्रों का हमारे जीवन में महत्व, महात्म्य, तो कई कई बड़े बड़े ग्रंथ हैं। छोटी सी भगवत गीता उनके ऊपर रखे गए बड़े बड़े ग्रंथ, और छोटी सी भागवत गीता को नीचे से निकाला गया सब ग्रंथ शुष्क हो गए। ये हमारा धर्म पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है, अपने आप में हमारा कल्याण करने में सक्षम है, कोई अन्य ग्रंथों की जरूरत नहीं है। कॉरोलरी लिटरेचर मतलब कि जो दूसरे साहित्य हैं वो पूरक हैं। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सर्व उपनिषद जिनको हम वेदांत कहते हैं, वेद वेदांत, तो वेद वेदांत और सब हमारा वैदिक साहित्य है, उनका आर्क है, उनका निचोड़ है। सरल भाषा में भगवान हमको समझाते हैं, सरल भाषा में, कोई ऊंची संस्कृत भाषा का प्रयोग भी नहीं किया गया। अगर भगवद गीता के श्लोक आप पढ़ोगे तो अपने आप में आपको समझ में आ जाएंगे, कोई ऊंची संस्कृत भाषा नहीं है। अन्य ग्रंथों में है, लेकिन यह सरल करके भगवान ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। एक गीता का अध्ययन पारायण सप्ताह का एकमात्र फल है श्री कृष्ण भगवान की हम संपूर्ण रूपेण पूजा करेंगे और इनका श्रवण करते ही लभते मुक्तिम उत्तमा। महात्म्य, गीता का महात्म्य में कहा गया है लभते मुक्ति उत्तमा, उत्तम प्रकार की मुक्ति हमको मिलेगी। पांच प्रकार की मुक्ति है, आगे बात करेंगे। अर्जुन मोहग्रस्त थे, मायाग्रस्त थे, लेकिन भगवान की गीता सुनी, भगवान के मुखारविंद से भगवान के वचनामृत सुने, गीता के रूप में उत्तम मुक्ति, तुरंत हथियार लेके खड़ा हो गया, जैसे मृत देह में जीव वापस आ जाए। तो ये भगवान के शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, हमको उत्तम मुक्ति मिल जाएगी। और श्री कृष्ण भगवान का यजन पूजन हमें 7 दिन में संपन्न करेंगे। ये 7 दिन हम जो कहने जा रहे हैं भगवद गीता का निचोड़, अगर आपके दिल में ठस जाए तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। अर्थदम, मनुष्य जन्म हमको अर्थ दे सकता है, लेकिन जब सब कुछ सांगो पांग हो, सब कुछ बराबर सही ढंग से हम करें, तो गीता जो है ये हमारा कल्याण करने का ग्रंथ है, और कल्याण हो जाएगा 7 दिन में आप सबका। अगर 7 दिन बराबर जल्दी आ जाएं और अंत में जाएं और बराबर गंभीरता से, जैसे प्रभुपाद की वाणी हम यथारूप सुना रहे हैं आपको, ये श्रील प्रभुपाद जी हैं, खड़ा चित्र जो है उनकी वाणी हम आपको सुना रहे हैं, अगर आपके हृदय में उतर जाए कल्याण ही कल्याण। लोग बड़े बड़े शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक्स नहीं जानते। जो शुरुआत का ज्ञान है वो नहीं जानते हैं, इसलिए फाउंडेशन रिमेन्स नॉट वेरी साउंड। कच्चा, हमारा हमारी नींव कच्ची रहती है। तो ये 7 दिन में हम चाहेंगे कि आपकी नींव पक्की हो जाए। तो ये गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने गाई है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति ने नहीं, सामान्य व्यक्ति ने नहीं गीत गाया, और वो भी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन, जो गत एकादशी थी 2-3 दिन पहले। तो उन दिन भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्योतिषर वटवृक्ष है, ज्योतिषर में वटवृक्ष के स्थल पर जब अर्जुन ने कहा सेनायोर उभयोर मध्य रथ में स्थाप अच्युत, जब ऐसी आज्ञा की अर्जुन ने भगवान को, तो वहाँ रथ ले गए ज्योतिषर, और बाद में सेनाओं का निरीक्षण करते हुए अर्जुन मोहित होते हैं। तब भगवान नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तो उनका मोह नष्ट करते हैं, इसलिए भागवत गीता भगवान खुद बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कोई ऑर्डिनरी भगवान नहीं है, भगवान बनने की लायकात उनको संपन्न नहीं थी, वो भगवान ही है। ऐसा नहीं कि ये कोई पोस्ट है और श्री कृष्ण ने पोस्ट ले ली। सनातन काल तक भगवान है, इस सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार, सृष्टि का विसर्जन करने वाले वो कृष्ण ही है। कृष्ण भगवान को यथारूप तत्वतः हम आगे वाले सत्र में सुनेंगे, लेकिन यहाँ ये कहूँगा कि असम ऊर्ध्व जो भगवान है वो कृष्ण है, और जब ये असम ऊर्ध्व कृष्ण भगवान जब ये गीता का ज्ञान देंगे तो उनके बराबर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और गीता के हर पृष्ठ में भगवान उवाच, श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो खुद भगवान गा रहे हैं। लोग अलग अलग अर्थ जरूर करते हैं, ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर कुठस्थ ऊपर वाला, कहीं कहीं उनमें जो कृष्ण भगवान के शरीर में था वो भगवान थे, या कोई नया नया लोग नया नया संप्रदाय में शिव भागवत गीता बोलते हैं, कृष्ण नहीं शिव ने गाई है, ये शिव नहीं शंकर भगवान, कोई दूसरे कोई शिव है, ऐसे कहीं कहीं अर्थ करते हैं। लेकिन असम ऊर्ध्व कृष्ण, कृष्ण भगवान के बराबर कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, और कृष्ण भगवान के ऊपर कोई परमेश्वर नहीं, ये भगवान ने भागवत गीता गाई है, इसलिए इनका महात्म्य है। गीता और गाने वाले अलग नहीं है, जैसे रेडियो पर लता का कोई गीत आए फिल्मी गीत तो हम देखते हैं कि तुरंत लता याद आता है, लता हम पहचान उनके साउंड से, उनके आवाज से हम पहचान जाते हैं कि ये लता है। तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी वाणी कैसे अलग हो सकती है, गीता ये भगवान श्री कृष्ण ही है और कृष्ण ही गीता है, अद्वैत एब्सोल्यूट, दोनों अद्वैत है। इसलिए हम गीता को इतना सम्मान देते हैं, इतना मान करते हैं गीता का। कोर्ट में जाओगे, हिंदू है मतलब सनातनी है, तो आपको गीता के ऊपर हाथ, सच बोलो, ये हमारा ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ। तो ये गीता जो है ये 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गीता का आयु अवधि 500 साल की है, ये गीता सनातन है। एवं इमं विवस्वते योगान प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, विवस्वान मनवे प्रा मनुर इस्वा कवे ब्रवित, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु, सकाले नेहा महता योगो भस्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, ये योग भ्रष्ट, जब भी ये गीता का ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है तब मैं अवतरित होता हूँ और फिर से गीता का ज्ञान प्रवर्तित करता हूँ। तो 500 साल पहले, 5000 साल पहले भगवान खुद अवतरित हुए, इनका अवतार नहीं, श्री कृष्ण अवतार ही है। श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अवतार ही, सब अवतार श्री कृष्ण के हैं। सामान्यतः हमारे धर्म में कहा जाता है कि विष्णु अवतार ही है, लेकिन यही शास्त्रों का अध्ययन करोगे, गूढ़ अध्ययन, तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण अवतार ही है। भागवत में पहले तीसरे अध्याय में पहले ही एस्टैब्लिश व्यासदेव स्थापित करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। एते च अंश कलह पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब अवतार हैं लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान है। सब अवतार, 24 अवतारों का वर्णन किया व्यासदेव ने, और अंत में कहा कि एते च अंश कला पुंस, ये सारे अवतार हैं, कला है या अंश है, विस्तार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ये स्वयं भगवान है। इंद्र आरि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, जब इंद्र के आरि दुश्मन जब कोलाहल मचा लेते, बहुत हल्ला करते हैं, मतलब राक्षस लोग जब हल्ला करते हैं, मृदयंती युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ, तो ये श्री कृष्ण भगवान सनातन, उनकी गीता भी सनातन, 500 साल पहले, 5000 साल पहले, 500 साल पहले ये चैतन्य देव आए, इसलिए मुझको 500 चैतन्य देव नित्यानंद, तो 5000 साल पूर्व ये गीता भगवान ने गाई, लेकिन ये गीता का कोई डेट नहीं के अभी उपस्थित हुई, सनातन है। हमारे सब शास्त्र सनातन है, हमारे वेद सनातन है, वेदांत सनातन है, हमारे शास्त्रों की कोई डेट नहीं कि किसी ने लिखा, व्यासदेव ने लिखा जरूर, लेकिन श्रुति स्मृति फॉर्म में, श्रुति स्मृति के रूप में पहले से मौजूद थे हमारे वेद शास्त्र, और श्रील व्यास देव ने उनको कंपाइल किया, फिर से कलयुग में नष्ट हो जाएगा इसलिए सब शास्त्र लिख दिए व्यास देव ने। तो भगवद गीता भगवान जब भी लुप्त हो जाती है तो फिर से प्रवर्तित करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले शिष्य हैं विवस्वान, सूर्य, सूर्यदेव, सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव को भगवान ने पहले भागवत गीता की इमं विवस्वते योगान प्रोक्तवान अहम अव्ययम, और अव्ययम का मतलब कि किसी की शुरुआत नहीं है, अव्यय, जिसका नाश न हो, जिसकी शुरुआत न हो, जिसका अंत न हो, अव्ययम, ये गीता अव्यय है। प्रोक्तवान अहम अव्ययम, बाद में इश्वाकु मनु वगैरह वगैरह भगवद गीता के रेसिपिएंट भगवद गीता प्राप्त करते हैं। तो ये है गीता, कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, और उसमें सब कुछ भगवान ने यथारूप कहा है, और यथारूप हम समझेंगे और तभी ही हम हमारा कल्याण कर पाएंगे। गीता के 18 अध्याय हैं और पहले 6 अध्याय में निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं भगवान, और दूसरे 6 अध्याय में 7 से लेके जो 6 अध्याय हैं उनमें भगवान भक्ति योग की बात करते हैं, और आखिरी 6 अध्याय में ज्ञान योग की बात करते हैं। प्रथम षटक का मतलब प्रथम 6 अध्याय, दूसरा षटक और तीसरा षटक। तो ये गीता के अध्याय है 18 अध्याय, और हर अध्याय का महत्व अपने आप में है। श्लोक संख्या है 700, और उनमें से एक धृतराष्ट्र ने श्लोक, प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामयेत युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र एक श्लोक, और 41 श्लोक संजय जो सेक्रेटरी है धृतराष्ट्र का और श्रील व्यास देव के शिष्य है, उत्तम शिष्य, और 84 श्लोक अर्जुन ने गाया, और बाकी के 574 श्लोक खुद भगवान ने गाए। और ज़्यादातर भगवद गीता 645 श्लोक में अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद 18 अक्षर का, और बाकी के जो 55 श्लोक हैं उनमें 4 अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रकार के छंद हैं। तो ये भगवद गीता के विषय भी 5 है। भगवद गीता को अगर आपको समझना है तो 5 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सारी गीता में 5 चीजों की बात करी है भगवान ने। आप कल से पेपर और पेन लेके आओ और सब कुछ स्टूडेंट बन के आओ, ठीक है? कौन लाएंगे, हाथ खड़ा कीजिए, और ये सब हाथ खड़े वाले आगे बैठेंगे, और हर रोज, और आपकी एग्जाम भी होगी। एग्जाम ये कोई सप्ताह या कोई बड़े बड़े प्रवचन या बड़ी बड़ी कथा नहीं हो रही है, आपको हम एजुकेट करने के लिए आए हैं, आपको अभ्यास कराएंगे। तो कल से एक सुंदर नोटबुक ले आओ, है ना, सुंदर, और पेन, और लिखो। तो गीता के पांच विषय हैं। पहला गीता का विषय है ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, ये गीता का विषय है। आप हैरान हो जाओगे कि कहीं कहीं धर्म प्रवर्तक, प्रचारक, धर्म प्रचारक ये गीता में से कहीं कहीं अर्थ निकालते हैं भगवान कौन है, लेकिन बहुत ऑब्वियस स्पष्ट बात है कि गीता में भगवान कौन है, स्पष्ट बात है, कोई बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं है, स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मेरे से सबकी उत्पत्ति है, और दसवें अध्याय में सबकी उत्पत्ति, जो विभूति, जो जो विभूतियां हैं, सब विभूतियां मेरे से हैं, मेरी ये विभूति है। विष्णु, राम, शिव, ब्रह्मा, ऐरावत, हाथी, वटवृक्ष, ओमकार वगैरह वगैरह, कहीं 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 विभूति की बात करते हैं भगवान। ये सब विभूतियां मेरी है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते, मेरे से ही ये सब प्रवर्तक हैं। मत परतरम ना अन्यत, कितना सुंदर शब्द है भगवान के, मत मेरे से, परतरम पर, मेरे से ऊपर, ना अन्यत कोई, ना अन्य कोई, संस्कृत पढ़ने जाने की बात नहीं है, हिंदी है तो, मत परतरम ना अन्यत, ये संस्कृत नहीं, हिंदी है, इसमें क्या बुद्धि दौड़ाने की जरूरत है, उसमें क्या ट्विस्ट करने की जरूरत है। मत पर कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं। तो ईश्वर कौन है, ये गीता का विषय है। ईश्वर कौन है हम देखेंगे आगे। तो इंट्रोडक्शन, पहला जो हमारा दिन है, इंट्रोडक्शन टू भागवत गीता, ऐसा है ना कुछ विषय मेरे ख्याल से। तो ईश्वर कौन है, और सीधी सी बात है, मत परतरम नान्यत, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदिदेवम, अजम विभुम, आहुत्स्वरुषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवल व्यासम स्वयं चैव ब्रविषि में। आप खुद भी कह रहे हैं, व्यास भी कह रहे हैं, नारद कह रहे हैं, देव देवलोक देव 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 देवियां कह रहे हैं, देव ऋषि सब ऋषिगण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप परम ब्रह्म हो कृष्ण, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्र, परम परम पवित्र हो, पुरुष हो, शाश्वत पुरुष, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप दिव्य हो, ये जगत से परे हो, दिव्य, आदि देवम अजम विभुम, देवों के भी आप आदि हो, आदि देवम अजम अजन्मा हो, विभुम, विभु हो, विभु मतलब सबसे बड़े, उनके बड़ा, उनके ऊपर कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं, विभुम। आहस्वर उस सर्वे, सब ऋषि आके आ रहे हैं। तो ईश्वर, ये गीता का विषय है, कौन ईश्वर है, ईश्वर कैसे है, ईश्वर के आस्पेक्ट कैसे हैं, कितने हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते वदन्ति तत्व इदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। अद्वय ज्ञान है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। तो गीता का एक विषय है क्या, पहला लिखो, यहां लिख लो, आज यहां लिख लो, हृदय में उतर जाना चाहिए और हृदय आपका पवित्र पवित्र हो जाना चाहिए। गीता की ये वाणी है, हमारी नहीं है, गीता की ये वाणी है। और दूसरा विषय है गीता का, जीव क्या है, आत्मा क्या है, हम कौन है, हमारे कौन है, जीव, अविनाशी जीव, शाश्वत जीव, अणु है जीव, छोटा सा है, भगवान विभु उनसे बड़ा कोई नहीं, और जीव अणु, और अल्पज्ञ है, आश्रित है, चेतन है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है जीव। ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, मनसष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममेव अंश, श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा ही अंश जीव है। ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, और ये जीव सनातन जीव ही रहता है, जीव आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता, सनातन। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन आत्मा, सनातन आत्मा ही रहता है। तो ये जीव भी विषय हम देखेंगे, सारा एक सेशन, जीव क्या है, आत्मा क्या है। और तीसरा विषय है प्रकृति, प्रकृति पिता है, शक्ति माता है, आद्य शक्ति दुर्गा पार्वती अम्बा सत्या सावित्री गायत्री सरस्वती, सब शक्तियां हैं, ओरिजिनल आद्य शक्ति है राधा रानी। देखेंगे आप, हम जैसे जैसे आगे हम विकास, भगवद गीता का विकास करेंगे तो विकसित विकसित गीता में हम देखेंगे यथारूप सब कुछ। तो प्रकृति, भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकारम इति मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये भगवान की निम्न कक्षा की प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, लिखो, ये निम्न कक्षा की प्रकृति है। और जीवभूत महाबाहो अयदम धारयते जगत, और ये जीव ये परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, पर प्रकृति, उच्च कक्षा की दिव्य प्रकृति जीव है, आत्मा, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। ते गीता का विषय है। और चौथा है काल, सनातन काल, आयु हरति वैपुंसाम उद्यान अस्तान चयन असव तस्यार्थे यत क्षणो नित उत्तम श्लोक वार्तया। एक काल है उद्यान अस्तान, सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त, ये समय है काल। और काल हमको अगर हम वार्तया उत्तम श्लोक वार्ता सुनते नहीं करते नहीं तो क्या करता है हमारे, ये काल क्या करता है हमको भक्षण कर लेता है, हमारा भक्षण करता है। आयु हरति वैपुंसाम, आपका आयु हर लेता है काल। उद्यान अस्तान चन असव तस्यार्थे यत क्षणो नित नित्य उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की वार्ता कथा गाथा सुनना चाहिए। तो यह काल, काल की गिनती भी हम कर सकते हैं, ब्रह्मा की, ब्रह्मा का जीवन, ब्रह्मा की घड़ी, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो इसके मुताबिक हम काल का मापदंड। और पांचवा आखिरी विषय है कर्म, कर्म भौतिक गुणों के दबाव से हम कार्यरत रहते हैं, हम कार्य करना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती से कार्य कराया जाता है हमसे। कौन जबरदस्ती करता है? तीन गुण, सत्व रजस और तमस, ये तीन गुण हमको जबरदस्ती से कार्य कराता है। तो ये कर्मों का बंधन, कर्म सो शैल यू रिप, जैसा बोओगे ऐसा फल पाओगे, ये कर्मों की गति है, हम आगे जाते हुए देखेंगे कर्म। तो ये कर्म पांचवा विषय, पांच सब्जेक्ट मैटर भगवद गीता, कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांच गीता के विषय हैं। और गीता में और हम क्या देखते हैं कि भक्ति योग की प्राधान्यता, भक्ति योग प्रधान है। धर्म, ज्ञान और वैराग्य अगर भक्ति के बिना है तो वो शुष्क है, शुष्क, उसका कोई मतलब नहीं है। भक्ति अपने आप में एक सक्षम है हमारा कल्याण करने में, भक्ति अपने आप में सक्षम है, लेकिन अकेला वैराग्य, अकेला धर्म, अकेला ज्ञान सक्षम नहीं है। अकेला ज्ञान शुष्क वेदांतिस्ट हो जाओगे, शुष्क ज्ञान हो जाएगा, ड्राई शुष्क ज्ञान। और शुष्क ज्ञान का परिणाम क्या होगा? मैं भगवान हूं। शुष्क ज्ञान आपको क्या समझाएगा? आत्मा सो परमात्मा, क्या समझाएगा? सो हम, वो है वही मैं हूं, मैं हूं वही है, शुष्क ज्ञान। भक्ति के बिना भटक जाओगे, अकेला ज्ञान काम में नहीं आएगा। और वैराग्य भी भक्ति के बिना काम में नहीं आएगा। अगर भक्ति होगी वैराग्य दीपेगा। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में हम देखते हैं कई कई हजारों संख्या में काशी वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती शुष्क वेदांतिस्ट के शिष्य, सब शुष्क वेदांतिस्ट, भक्ति का लेश मात्र नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भक्ति से प्रभावित हो गए और खुद भक्त बन गए, वैरागी भक्त। तो अकेला वैराग्य शुष्क, भक्ति के बिना वैराग्य छूट जाएगा, ज्यादातर चलेगा नहीं। और धर्म भी ऐसा है, भक्ति के बिना धर्म पालन करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और स्वर्ग से पुण्य क्षय होगा, गिर जाओगे। क्षणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, अयि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। क्षणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य क्षय हो जाएगा आपका, धर्म बजाने से पुण्य इकट्ठा होता है और पुण्य से हमको स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग से आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनरावर्तन चलता रहेगा 84 लाख योनियों में। सो अकेला धर्म भी शुष्क है, इसीलिए भगवान कहते हैं धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महासुच। Abandon all these varieties of religion. Abandon. Sarva dharma. So dharma saath bhi bhakti chahiye. Ye Gita ka sandesh hai. Ki akela dharma, akela vairagya aur akela gyan. Suska. Bhakti. Bhagwan Sri Krishna गीता के हर श्लोक में भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। यो माम भक्त्या, भक्ति का प्रयोग करते हैं। तो गीता का विषय है, और गीता का विषय दूसरा यह है कि खुले आम भगवान कहते हैं कि देवों की उपासना करोगे तो देवों के पास जाओगे, और मेरी उपासना करोगे तो मेरे पास आओगे, मेरी उपासना करो। खुलेआम कहते हैं कृष्ण मेरी उपासना। ज्यादातर देवों की उपासना लोग क्यों करते हैं? क्षणिक सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वर्ग के लिए, ज्यादातर देवों की उपासना इसलिए करते हैं। लेकिन कृष्ण के लिए, कृष्ण के साथ एक ही बात, प्रेम का व्यवहार। भक्ति का दूसरा अर्थ ही प्रेम है, भक्ति का अर्थ प्रेम। तो भगवान कहते हैं एपि अन्य देवता भक्त्या यजते सदयान्विता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय अजन्त अविधिपूर्वकम्। ये भी अन्य देवता भक्त्या, दूसरे देवी देवताओं की उपासना जो करते हैं वो मेरी ही उपासना करते हैं, लेकिन अविधिपूर्वक। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। यान्ति देव व्रता देवान, जो देवों का व्रत, देवों का उपासना करते हैं वो देवों के लोग जाते हैं, ये ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से बाहर नहीं। भगवान का धाम ब्रह्मांड से बाहर और कहीं 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 दूर, कहीं कहीं अंतर दूर ऊंचा। देवों की पूजा करने वाले ये ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे, मतलब पुनरागमन करते रहेंगे। ये शब्द भगवान के, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, देवों ब्रह्मलोक सुधी के ब्रह्मलोक तक के देवों की उपासना करोगे तो पुनरावर्तन अर्जुन पुनरावर्तन, लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी उपासना मेरी भक्ति जो करेगा उनको पुनर्जन्म नहीं होगा। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, और पितृओं की पूजा करेंगे उपासना करेंगे पितृलोक जाएंगे। पितृलोक नर्क लोक के बाजू में है, बगल में है। पितृलोक निम्न कक्षा का लोक है नीचे, और देवों का लोक है ऊपर पृथ्वी बच में है। पितृन यान्ति पितृव्रता, इसका मतलब ये नहीं कि पितृ भक्ति नहीं होनी चाहिए, माता पिता की भक्ति नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण माता पिता से श्रेष्ठ है। पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा, भूतों की उपासना करने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं। और यान्ति मद्याजिनोपि माम, मेरी उपासना करने वाले मेरे पास आते हैं, मेरे धाम आते हैं। जो अनंत कोटि ये ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसके बहुत बहुत ऊपर, हम देखेंगे आगे चलेंगे वैसे देखेंगे सृष्टि की रचना। भगवान का धाम कहीं कहीं ब्रह्मांडों के ऊपर है। तो ये स्पष्ट बात एक विषय है गीता का विषय क्या, कि देवों की उपासना करने वाले देवों को, मेरी उपासना करने वाले मुझको प्राप्त करते हैं। और गीता का हर श्लोक में उपदेश क्या है, मेरे धाम वापस आओ, मेरे पास आओ, ये उपदेश है, मेरे धाम में वापस आओ। ते गीता के पांच विषय हैं। और गीता समझने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है, गीता को समझने के लिए कुछ लायकाते होती है, लायकाते नहीं लेकिन आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब है कि ये आवश्यक है कि आपकी ये योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता, कि श्री कृष्ण को आप पहला, चार आवश्यकता है। पहला क्या, श्री कृष्ण को आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अशम ऊर्ध्व अकेले पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान जो एक है वो कृष्ण है, ऐसा आप स्वीकार करें। ये आवश्यकता है गीता को समझने की, आवश्यकता है कि आप श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, उनके ऊपर कोई नहीं उनके बराबर कोई नहीं, ऐसा स्वीकार करें। अगर स्वीकार नहीं करोगे आपके समझ में गीता आएगी नहीं। श्री कृष्ण असम ऊर्ध्व स्वीकार करना होगा, यह आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता यह है कि हम सबको श्री कृष्ण भगवान से शुरू हुई हुई गुरु परंपरा में हमको शामिल होना होगा। गुरु परंपरा में हमको अनुगत होना होगा, मतलब कि कृष्णा ब्रह्मा नारद व्यास माध्वाचार्य चैतन्य देव श्रील प्रभुपाद षड गोस्वामी श्रील प्रभुपाद एंड हम सब प्रभुपाद के पीछे। तो ऐसी गुरु परंपरा में हमको अनुगत होना चाहिए, अनुगत होना पड़ेगा। जब तक ये गुरु परंपरा में अनुगत नहीं होंगे तब तक ये गीता का ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा, अनुगत होना पड़ेगा। और वो कैसे है? अनुगत होना पड़ेगा निर्मत्सर, हो के, मत्सरता नहीं, अहंकार नहीं, द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं, मत्सरता, निर्मत्सराणाम सताम। हमारा भागवत है उसमें पे दूसरा श्लोक में कहा निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर लोग जो महान आत्माएं हैं, ऋषि मुनि हैं, इन लोगों के लिए ये भागवत है। निर्मत्सराणाम सताम, हमारे सद गोस्वामी निर्मत्सर थे, निर्मत्सरो पूजितो, सद गोस्वामी निर्मत्सर, तो इसे निर्मत्सर होना पड़ेगा, मत्सरता नहीं। और तीसरी लायकात है श्री कृष्ण के साथ कुछ न कुछ संबंध से जुड़ना होगा। श्री कृष्ण मेरे पति हैं, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, श्री कृष्ण मेरे पिता हैं, श्री कृष्ण मेरे बेटे हैं, नंद जसोदा पुष्टि मार्ग छोटा, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, तो ऐसे माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और दास्य शांत रस, ये जो प्रधान रस है, ये रस में हमको संबंधित होना पड़ेगा। कृष्ण कुछ न कुछ कृष्ण भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा, कोई भी रीत से, कोई भी तरीका से। संबंधित होने के बिना गीता का ज्ञान आपको नहीं हो सकता, संबंधित होना पड़ेगा, ये आवश्यक है। और चौथी का आवश्यकता है कि भक्ति योग ही श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भक्ति हो योग ही एक प्राधान्य योग है। न कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, राज योग, सहज योग, कई कई योग, कोई योग नहीं, सब योग एक योग में मिलते हैं, वो है भक्ति योग। और भक्ति योग की प्राधान्यता हमको समझनी होगी। हम आगे चलते हुए भक्ति योग की परिभाषा करेंगे, भक्ति क्या है, योग पद्धति, योग योग पद्धति, सर्वश्रेष्ठ योग क्या है, भगवान कैसे, कौन से योग से प्राप्त करेंगे, आगे चलते हुए हम देखेंगे। आइए गीता जो है समझने की विधि, गीता हम कैसे समझेंगे, ये सब लिखो आप लोग, समझने की विधि आगे आवश्यकता है। सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि गीता का ज्ञान ये कोई संशय वाला नहीं है, संशय रहित है। गीता का ज्ञान दोष रहित है, संशय रहित है, सर्वकालीन है, सार्वभौमिक है। गीता का ज्ञान जो है वो संशय रहित, कोई भी प्रकार का शंका नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया है। एज इट इज भगवान का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान, और उन्होंने ये ज्ञान दिया है भगवद गीता में, इसलिए ज्ञान का कोई शंका नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान संशय रहित है और दोष रहित है। ये ज्ञान में, गीता के ज्ञान में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, कोई भूल नहीं, कोई त्रुटि नहीं, दोष रहित ज्ञान। और साथ में ये सर्वकालीन है, ऐसा नहीं कि ये काल में, वो तो 5000 साल पहले अर्जुन ये परिस्थिति में थे, तो अभी गीता का ज्ञान भी बदलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सर्वकालीन, सबकालीन अव्यय अव्यय ज्ञान है, सनातन ज्ञान, संशय रहित, दोष रहित और सर्वकालीन और सार्वभौमिक। ये भारत की ही गीता नहीं है, ये पृथ्वी की गीता नहीं है, ये स्वर्ग लोक की गीता नहीं है, ये ब्रह्मांड की गीता नहीं है, ब्रह्मांड ये यूनिवर्स की गीता नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड सारी सृष्टि की ये गीता है, सार्वभौमिक गीता है। गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है। दूसरा, ये गीता जो है ये कोई संशोधन का विषय नहीं है कि हम उनके कुछ पीएचडी करें, उनमें कुछ संशोधन करें, उनमें कुछ तोड़ मरोड़ करें। संशोधन, गीता का ज्ञान संशोधन का विषय नहीं है, एज इट इज। श्री कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया है गीता बोली, वो संशोधन, कोई संशोधन नहीं, एज इट इज कृष्ण की वाणी है, अपुरुषीय। ये वाणी अपुरुषीय है और गीता सुनने का परिणाम क्या है, आप गीता सुने हुए तो 7 दिन के बाद क्या परिणाम आएगा, तो आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हृदय परिवर्तन करके ही हम रहेंगे, आपका हृदय परिवर्तन। अर्जुन का हृदय परिवर्तन हुआ और वो बोल उठे, नष्ट मोहो श्रुति लब्ध्वा तत्प्रसादात मया अच्युत स्थितोस्मिन् गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्ट मोहो, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति लब्ध्वा, मैंने मेरी स्मृति वापस प्राप्त की, स्मृति लब्ध्वा। और अंत में अर्जुन क्या, उनने क्या किया कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपके हर वचन का पालन करूंगा। तो ये परिणाम आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। गीता हम 7 दिन जो सुनेंगे उसमें क्या होगा, आपका नष्ट मोह, आपका सब मोह नष्ट हो जाएगा। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, भगवान जो कहते हैं गीता में वो सब हम पालन करेंगे, करिष्ये वचनम तव। तो ये परिणाम होना चाहिए, जीवन श्री कृष्ण को अर्पित होना चाहिए। हम क्या गीता सुन के परिणाम क्या आना चाहिए कि हमारा जीवन श्री कृष्ण भगवान को अर्पित, हमारा जीवन कृष्ण न्योछावर करना चाहिए। खुद भगवान है, भगवान वाच, भगवान की परिभाषा आगे करेंगे, लेकिन खूब सरल और सिंपल परिभाषा है, जिन से सब कुछ पैदा होता है, जो सबका पालन पोषण करता है और अंत में सब कुछ उनमें समाता है, सृष्टि स्थिति प्रलय जो करता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, मैन्युफैक्चर किया, इंग्लिश शब्दों में ये शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि जब कुछ मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनके साथ एक मैनुअल भी हम बनाते हैं कि मशीन ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा ऐसे रिपेयर होगा। पुस्तिका रचयिता एक मैनुअल भी बनाता है, तो श्री कृष्ण रचयिता है सृष्टि के, तो उन्हें मैनुअल भी बनाया सृष्टि कैसे चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी सीधी सादी ऊंची नीची सृष्टि क्या है, उनके गुण धर्म क्या है, सृष्टि का मैनुअल बनाया। तो उसको बोलते हैं वेद पुराण शास्त्र, सृष्टि कैसे चलेगी, उनका मैनुअल है शास्त्र। और श्रील प्रभुपाद जी ये शास्त्रों को अपनी माँ के साथ सरखामणी करते हैं। भगवान कौन है जानना है तो शास्त्रों से जानना पड़ेगा, जैसे कि पिता कौन है जानना हो तो कैसे जानोगे, एक ही रास्ता है ना, माता के बिना आप कोई भी नहीं बता सकता आपको कि आपके पिता कौन है। तो इसी तरह इस शास्त्र की हमारे जीवन में प्राधान्यता क्या है कि शास्त्र हमको हमारे पिता कौन है पहचान करवा सकता है। तो ये गीता शास्त्र है और गीता हमारी माँ है, और ये गीता माँ हमारे पिता कौन है उनकी पहचान करवा सकते हैं। तो शास्त्र ये हमारे जीवन के अविभाज्य अंग है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र को छोड़ के मनमानी रीत से वर्तते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत, अपनी मनमानी करता है, शास्त्रों के विधि विधान को छोड़ के मनमानी करता है, न सुखम वाप्नोति उनको सुख नहीं हो सकता, न सिद्धिम उनको सिद्धि भी नहीं मिल सकती, न पराम गति उनको परम गति भी नहीं मिल सकती। ये शास्त्रों का हमारे जीवन में महत्व है। अगर हमको सिद्धि परम गति परम सुख चाहिए तो शास्त्रों के बिना काम नहीं हो सकता। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परम गति। तो ये गीता के वंदनीय वक्ता जो है वो कृष्ण है, और कृष्ण ये भगवान है और वो पिता है, और मैनुअल ये शास्त्र है, सृष्टि कैसे चलेगी, पिता कौन है माता कौन है सृष्टि क्या है, कैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक क्लेश वगैरह वगैरह कई सृष्टि में जो बातें हैं ये हम गीता से समझ सकते हैं। और ये गीता को हम परंपरा में समझेंगे तभी काम होगा, गुरु परंपरा, मनमानी नहीं, यतमत ततपत, मेरा मंतव्य ऐसा है इसलिए यही सत्य है, गलत नो यतमत ततपत नहीं, परंपरा एवं परंपरा प्राप्तिम, गुरु परंपरा कृष्ण भगवान से शुरू हुई परंपरा जो हो और कोई नहीं। आजकल ज्यादातर वक्ता अपने माँ बाप को गुरु परम, मेरे गुरु माँ है, मेरे गुरु मेरे पिता है, मेरे गुरु ये है वो है, नहीं। भगवान श्री कृष्ण से शुरू हुई हुई नचारी गुरु परंपरा, टीचर्स, शिक्षक। तो गुरु परंपरा में ये ज्ञान, और भगवान श्री कृष्ण वो त्रिकालज्ञ है। ऐसा नहीं कि वो कुरुक्षेत्र के मैदान में बोल दिया उन समय के मुताबिक, त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान। ऑर्डिनरी भगवान नहीं, हमारे भगवान ऑर्डिनरी नहीं है, त्रिकालज्ञ, सर्वगुण संपन्न कृष्ण, उनकी ये लायकात है भागवत गीता बोलने की। और वो कृष्ण चार जो भूल होती हैं उनसे परे हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी उनमें नहीं है, छल कपट श्री कृष्ण में नहीं है। अगर श्री कृष्ण में सब छल कपट है तो भक्तों को आनंद देने के लिए है, छल कपट भगवान के पास नहीं है। और उनकी इंद्रियां इल्यूजरी नहीं है, अज्ञानता बस इंद्रियां नहीं है, और कभी भी भूल नहीं कर सकते। भगवान वो है जो भूल न करे, अगर भगवान भूल करे तो भगवान नहीं है। तो भगवान कभी भी भूल नहीं कर सकते, कृष्ण भगवान भूल से ऊपर है। तो ये भगवान श्री कृष्ण असम ऊर्ध्व है और त्रिकालज्ञ है और पोते पिता रचयिता है शास्त्रों के, इसलिए हम भागवत गीता को हम यथारूप मानेंगे। और गीता के श्रोता के भी कुछ गुण होना चाहिए, वक्ता के गुण, वक्ता कौन है, गीता के श्रोता हम सब श्रोता, सोता नहीं सरोता नहीं, है ना, श्रोता, तो हम सुनते हैं। तो हमारी लायकात ये होनी चाहिए कि हम ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो। सबसे पहले ईर्ष्या और द्वेष किससे करते थे हम, किससे करते हैं, ईर्ष्या किसकी करते हैं, कृष्ण की। यही क्यों भगवान, मैं भी भगवान, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, जो मेरी इच्छा द्वेष करता है, कृष्ण कहते हैं गीता में, उनको मैं ये द्वंद्व जगत में डालता हूं, भौतिक जगत में। तो श्रोता ईर्ष्या और द्वेष से रहित होना चाहिए, श्रोता विनीत स्वभाव होना चाहिए, सरल स्वभाव। ऐसा नहीं कि ये तो कहते हैं बोलते हैं लेकिन हम कुछ और करेंगे, सरल स्वभाव। और नम्रता होनी चाहिए, नम्रता, सरलता, नम्रता, एकांतिकता। भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं है। अब और सब देवी देवता हैं उनके भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, ये समझौता होना चाहिए। तो एकांतिकता, सरलता और विनम्रता, ये श्रोता के गुण होने चाहिए, लायकात, श्रोता के लायकात। और श्री कृष्ण दूसरी लायकात क्या है, श्री कृष्ण भगवान को संपूर्णतः 100% स्वीकार करना, शत प्रतिशत स्वीकार करना श्री कृष्ण को, वो जो भी कह रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, ध्रुव सत्य है, ऐसा स्वीकार करना, ये श्रोता की लायकात है। पहले तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यही एक भगवान है स्वीकारना, बाद में वो जो कहते हैं उनका शब्द यथारूप है वो स्वीकार करना। कैसे? विनम्रता, सरलता, एकांतिकता, ऐसे स्वीकार करना। ये हमारी लायका, ये लायका तो आप ये समय से शुरू कर दो, 7 दिन के लिए हृदय परिवर्तन हो जाएगा, है ना। और उच्च प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, उच्च प्रकार की श्रद्धा श्रोता में, ऑर्डिनरी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा शब्दे विश्वास करे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में पूर्णतया विश्वास, पूर्णतया, उनको उच्च प्रकार की श्रद्धा कहते हैं। उच्च प्रकार की श्रद्धा, संपूर्णतया विश्वास, श्रद्धा शब्दे विश्वास करें, ऐसी उच्च प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए श्रोता में, तभी काम बनेगा। हृदय परिवर्तन, भाव विभोर, हृदय में भाव भर जाएगा, प्रेम, कृष्ण प्रेम उभर आएगा। कब? ऊंची, जितनी ऊंची श्रद्धा इतना ऊंचा भक्त। श्रद्धा शब्दे विश्वास करें। और गुरु की सेवा, गुरु को प्रसन्न किया हुआ होना चाहिए, आपके ऊपर गुरु की असीम कृपा होनी चाहिए, ये श्रोता के लक्षण है। गुरु कृपा भावान्वित होना चाहिए, ये श्रोता का लक्षण है। और ब्रह्मचर्य का पालन, और एक आसन पर बैठना, और मिताहारी रहना 7 दिन श्रोता। बराबर खाओगे तो श्रोता नहीं सोता, है ना, नींद आ जाएगी। और ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी, बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का जो पालन कर सकता है वो भगवत धाम जा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन जो नहीं कर सकता है उनके लिए भौतिक जगत, ये लायकात है। तो श्रोता की लायकात और वक्ता की भी लायकात होनी चाहिए, जो आपको कथा कह रहे हैं। वक्ता की सबसे बड़ी लायकात है कि वो गुरु परंपरा में होना चाहिए, ऐसा नहीं मनमानी करें, गुरु परंपरा में अनुगत। साधु मार्गानुगमनम, गुरु के मार्ग पे, गुरु के चरण चिन्हों में चलना चाहिए। साधु मार्गानुगमनम, स्वधर्म पुच्छा, गुरुपाद आश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो ये गुरु परंपरा श्रोता, वक्ता गुरु परंपरा में होना चाहिए। पहले पूछो आपका गुरु कौन है, पहले पूछो। हमारे गुरु की छवि जहां भी जाओ, पहले ये गुरु भक्ति है। ये इस्कॉन में गुरु भक्ति का प्राधान्य बहुत है, कोई अन्य संप्रदायों में इतनी प्राधान्य नहीं मिलेगी, प्राधान्यता गुरु परंपरा। गुरु के प्रसाद से हम हैं, हम गुरु के प्रसाद से बने हैं। प्रभुपाद की असीम कृपा है,
तो जो व्यक्ता है गुरु परंपरा में, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वक्ता है उनने सुना होना चाहिए, उनने सुना हो, मेरी हिंदी अच्छी नहीं, वो अपने गुरु से सुना हुआ होना चाहिए। श्रोत्रियम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए श्रोत्रियम, गुरु परंपरा में ज्ञान सुना हुआ जाए, और वो व्यास का प्रतिनिधि होना चाहिए। ये व्यास गादी है, ये हम सारा भारत हिंदुस्तान श्रील व्यास देव के शिष्य हैं, श्रील व्यास देव के शिष्य हैं। न पातांजलि, न चार्वाक, न नास्तिक कपिल, कई कई फिलोसोफर हुए, लेकिन हम सब किसके आश्रित हैं? व्यास देव के। व्यास की फिलोसॉफी हम अनुगमन करते हैं, व्यास देव। तो व्यास के प्रतिनिधि होने चाहिए, और छल कपट नहीं। जो वक्ता है वो छल कपट से रहित हो, छल कपट से ऊपर होना चाहिए, रहित होना चाहिए। नो चीटिंग प्रोपेंसिटी। श्रोता श्रोता तो चौथी लायकात है कि जो वक्ता हो, सबसे बड़ी लायकात उनकी है कि कोई भी प्रकार की उनको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, अनपेक्ष होना चाहिए। अगर आपसे मुझको कुछ अपेक्षा हो तो आप जैसा सुनना चाहोगे वैसा मैं सुनाऊंगा, बहुत सुंदर म्यूजिक, सुंदर राग, सुंदर यू नो, और नचाऊंगा कूदाऊंगा, नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। आपको यहाँ मैं आपका कल्याण करने के लिए बातें बताऊंगा, आपको अच्छी लगे न लगे ये आपकी मर्जी। नो अपेक्षा, कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं आपसे। अगर आपसे अपेक्षा रखूंगा तो कठपुतली हो जाऊंगा आपके हाथों में, आप मुझको नचाओगे, लेकिन मैं नचाना चाहता हूं आपको ये गीता ज्ञान से। अनपेक्ष होना चाहिए। मेरी कथा करवानी है, पहले लाख, दो लाख, पांच लाख पहले मेरे जेब में रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। अनपेक्ष, इच्छा रहित। सुखदेव गोस्वामी, वस्त्रों की भी अपेक्षा नहीं, दिगंबर सुखदेव गोस्वामी, ऐसे वक्ता होना चाहिए। वक्ता ऐसा होना चाहिए कि आपका हृदय परिवर्तन करे और अपेक्षा कुछ होती है तो वक्ता वक्ता नहीं रहता, वक्ता श्लाघनीय हो जाता है, श्लाघा करता है, और श्लाघा से क्या परिवर्तन होगा। तो वक्ता की लायकात, वक्ता वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव। अवैष्णव मुखाद गिरात पुताम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यथापय। अवैष्णव के मुख से हरि की कथामृत नहीं सुनना चाहिए, सॉरी क्या कहा मैंने, कि वैष्णव अवैष्णव के मुख से हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? कि सर्प सर्प उच्छिष्ट यथा पय, दूध पय, दूध को अगर सर्प थोड़ा सा छू ले तो दूध दूध नहीं रहता, लगता है दूध लेकिन जहर बन जाता है। ऐसे कथाकार कृष्ण करें, कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण की कथा करेंगे, भागवत कथा करेंगे, भागवत कथा करेंगे तो कृष्ण का नाम भी नहीं आएगा, भगवान ईश्वर परमेश्वर ऊपर वाला सब कुछ नाम आएगा, लेकिन कृष्ण की भागवत कथा में नाम ही नहीं आएगा। जिसकी कथा सुनो उनमें देखो कितनी बार कृष्ण का नाम आता है, उसके ऊपर कथा कितनी ऊंची है उनका मूल्य कर सकते हो आप। कृष्ण का जितना नाम कथा में आएगा, मैंने अभी तक कथा की कितनी बार कृष्ण का नाम मैंने बोला, हर सेंटेंस में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, स्वर्प सर्प उच्छिष्ट यथापय अवैष्णव मुखद गिरा उताम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम, श्रवणम नैव कर्तव्यम, स्वर्प उच्छिष्ट यथापय। वक्ता वैष्णव होना चाहिए, गुरु